الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور فرمایا گیا ہے اور وہ بھی جب تک کہہ نہ دیں کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے سو کفر میں نہ جا پڑنا. معزز سامعین کرام لمبی آیہ کریمہ ہے اور اپنے جو یہ وقت ہے اس کی مطابقت کے ساتھ اس سے متعلق گزارشات پیش کر رہا ہوں, اس لیے یہ حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. اور یہ جو موضوع ہے جادو کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو شیاطین اختیار کیا کرتے تھے. اب جب بات شیاطین کی فرمائی گئی ہے تو اعمال بھی ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ کن لوگ کن کے یہ اعمال تھے, اس میں جنات اور انسان دونوں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو سے متعلق جب عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. تو بنیادی بات ہے باطل ہے کفر ہے. اور یہاں متصل حصے میں اللہ کے دو فرشتے جو بھیجے گئے ہاروت اور ماروت بیان فرمائے گئے ہیں, اس سے اگلا حصہ ہے کہ جو لوگ ان سے جادو سے متعلق جاننے آتے تھے انہیں بھی جب تک کہ وہ پہلے باخبر نہ کر دیں خبردار نہ کر دیتے کہ یہ غلط ہے یہ اس سے ایک امتحان ہے اور اس عمل سے کفر میں جا پڑو گے, تب تک وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے. مختلف زمانوں میں مختلف انداز انسانوں میں رہے ہیں. ظاہری پہلوؤں سے جدت کے حوالے سے جہاں بے شمار ایجادات ہیں ان حوالوں سے بھی اور مزاجوں کے حوالوں سے بھی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک انسانی زندگی جو ہے اس کا انداز اور ایک پہلو ایسا بھی ملتا ہے جیسے کسی نو مولود کی پیدائش ہے, بچپن ہے لڑکپن ہے جوانی ہے پھر پختہ عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک جو ہے یہ انسانی حیات کل انسانی حیات کی پختگی جو ہے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں جس سے قیامت کا دن ارشاد نہیں لیکن اندازہ ہو جاتا ہے اور بڑا واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا قریب ہے. اب ابتدا انسانی حیات کی اس عالم خلق میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے ہے اور یہیں عالم خلق سے جو اس مخلوق نے اٹھنا ہے اخیر جو ہے جب سور پھونک دیا جائے گا قیامت قائم ہوگی تو اختتام پذیر ہوگا یہ خلق اور اس میں یہ مخلوق جسے اللہ کریم نے اشرف المخلوق پیدا فرما. اسی طرح آپ کے حضور قیامت کے حوالے سے عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو ارشاد فرمایا اس وقت دن ڈھل چکا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سائے لمبے ہو چکے تھے چونکہ جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو سورج سیدھا ہوتا ہے لیکن جب ظہر کی طرف بات آتی ہے تو سایہ ڈھلتا ہے. جب سایہ لمبا کہہ دیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اصل جو وجود ہے اس سے بھی سائے لمبے ہو جائیں تو پھر وہ اثر اور اثر کا ڈھلتا وقت ہوتا ہے. تو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली का मफहूम जो है वो ये है कि जैसे इस दिन का वक्त बचता है ऐसे दुनिया की हयात या कुर्ब क़यामत के हवाले से आपने इरशाद फरमाया। तो इस सारी ज़िंदगी के पहलुओं में आप इंसानी ज़िंदगी और ज़ाती ज़िंदगी पर गौर फरमाएं तो बेशुमार कैफियात से इंसान गुजरता है और हर हाल में एक जो बेहतर और साले हिस्सा है वो हमेशा मौजूद रहता है और वो एक ही होता है, क्योंकि अच्छाई एक ही है, बुराई मुख्तलिफ पहलू इख्तियार करती है, मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है, अच्छाई की एक ही शक्ल है, साले अमल मुसबत पहलू देता है, हमेशा मुसबत पहलू देता है, उसके दर्जात हो सकते हैं लेकिन मनफी पहलू जो है वह हमेशा मुसबत के मुकाबिल भी होता है लेकिन बेशुमार अंदाज अख्तियार करता है, और इसमें शैतान जो है वो भी पूरी कोशिश करता है कि कोई ना कोई पहलू वसवसे का इंसान को डालता रहे। फिर नफ्स जो है उसे जितनी लज्जातें दुनिया तवाना करती हैं उतना फिर वो भी अपने लिए एक रास्ता तलाश करता है। तो इंसानी हयात में कुरान करीम ने जो इरशाद फरमाया अक़वाम साबिका के हवाले से तो आप गौर फरमाइएगा, मुख्तलिफ पहलू मिलते हैं। इन्हीं में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक़्त मुबारक बयान फरमाया जा रहा है तो उसमें जादू का आम होना कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए और उन मौजज़ात में एक ऐसा पहलू कि आपकी बादशाही बेशुमार मखलूकात पर थी जिसका कुरान करीम में भी जिक्र फरमाया गया, कुछ अकसाम भी बयान फरमाई गई। तो शैतान ने यह कोशिश की और जिन्होंने नफ्स की इबादत की अपने नफ्स की जो है वो मानी वो सारे इसी इक्तदा में कि हाँ ये जादू है नऊज़ु बिल्लाह, ये वजह इसके कि ये जो अल्लाह करीम ने खर के आदत मामूलात अता फरमाए इनसे सबक सीखते, इनसे रहनुमाई हासिल करते, मुकाबिल आके चूँकि तकब्बुर अंधा कर देता और इनकार की बुनियाद तकब्बुर है और कुरान व अहादीस में आमाले बद जो हैं वो इस दर्जे का मुतकब्बर कर देती हैं कि देखती आँखों हक नज़र नहीं आता, सुनते कानों हक सुनाई नहीं देता। तो ये कोशिश की गई कि हम भी इस तरह की कुव्वत जो है उसे हासिल करें और बिलामूम भी ये देखा गया है कि मिजाज इंसानी में ज़ात जो है इसे बड़ी अहमियत देता है। सूफियाए कराम जब इंसानी खसलतों पर बहस करते हैं और बुराई के हिस्सों को मौजू रखते हुए इस पहलू से पर्दा उठाते हैं कि जब अल्लाह अल्लाह नसीब हो, कैफियात कल्बी नसीब हों तो कैसे गलतियां कोताहियां इंसान से दूर होना शुरू होती। एक बात वो इरशाद जो फरमाते हैं वो भी हैरान कन है कि ये जो ज़ाहरी बदआमालियाँ हैं ये एक करके छूटती जाती हैं। वो फरमाते हैं सबसे आखिर जो जाकर बुराई या गलती या कोताही सूफी के अंदर से निकलती है वो उसकी अना है। इसलिए कि नफ्स तकवीयत हासिल करने के लिए ये पहलू भी इख्तियार कर लेता है कि मुझ जैसा इबादत गुजार कोई नहीं। अब बात तो अल्लाह की इबादत करने की है, उसका हुक्म मानने की है, हदूद व कयूद जो हैं कुरान व सुन्नत हैं, इसमें ज़ात फिर कहाँ से आ गई? तो कोई ना कोई पहलू जो है नफ्स जो है वो भी तलाश करता रहता है और उसे साथ शैतान जो है वो भी मदद दे रहा होता है। और हालात मुआशरे के जो हैं मज़द सामिन कराम अमूमी जो हालात मुआशरे के होते हैं उसी मुआशरे की गमाजी कर रहे होते हैं, एक आईना होता है किरदार का मुआशरा। जब कमज़ोरियाँ और बुराइयाँ आम हो जाएँ तो मुआशरे की रवश जो है वो भी ऐसी ताफ़ुन ज़दा हो जाती है कि बुराई में मदद देती है और अच्छाई के सामने ढाल का काम कर रही होती है, उसे रोक रही होती। तो उस ज़माने में مخلوق کے مزاج میں جادو کا سیکھنا یہ عام تھا، اور آپ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر مقابلے کے لیے شیطان نے اور کوشش کی کہ اس کو اور ہوا دے۔ جیسے میں نے گزشتہ بیان میں بھی عرض کیا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت اس پہلو میں تفسیر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، ان دو فرشتوں کا مبعوث فرمانا۔ اب اس میں کئی ایسے گفتگو یا کئی ایسے پہلو یا سوال اٹھائے جاتے ہیں جس کا بیان کرنا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ سامے کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتے رہتے، اور بات سنے نہ سنے، سمجھے یا اس درجے کی نہ سمجھے جو عرض کی جا رہی ہے، وہ سوال خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ لگا رہے۔ اس لیے غیر ضروری بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ متعلقہ موضوع پر رہا جائے اور اپنی ذات کو دیکھا جائے کہ اس میں میرے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے، میں نے کیا کرنا۔ تو خواہ مخواہ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پھر بندے کو خراب کرتے رہتے ہیں، عمل سے بندہ دور ہوتا ہے۔ یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا خواہ مخواہ، سمجھنا اور شے، اور خواہ مخواہ کی جو خرید ہوتی ہے جسے محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ بال کی کھال اتار رہے ہیں، تو یہ بلا ضرورت ہوتا ہے۔ تو یہ اگلے کے ساتھ تو کیا کرے گا یا نہیں کرے گا، بندہ خود الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے مختلف پہلو جو ہیں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اور واقعے کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے یا تحریر جو ہے وہ بھی ملتی ہے، لیکن اختصار فرمایا گیا قرآن و حدیث، تو ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کا سمجھ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت انداز جو ہے یہاں بیان فرمایا ہے، آپ بڑا سادہ انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اللہ کا جو نبی اور رسول ہے، اللہ کا مقرر، وہ نیکی اور بدی ان دو کو واضح فرماتے ہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، نیکی کی عملی صورت وہ بھی مخلوق کو نصیب ہوتی ہے، بدی کی نشاندہی کہ یہ بدی ہے، یہ اصول ہیں، ان سے باہر جو ہے وہ بدی ہے۔ یہاں مخلوق اتنی امڑ پڑی اس طرف کہ اللہ کریم نے دو فرشتے بھیجے کہ وہ اس کی عملی صورت کو بھی کھول رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی شان نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پھر مثال دی کہ جوئے کی بات اگر کوئی کسی کو بتا رہا ہو کہ یہ غلط ہے، پھر اس کی اقسام کو اختیار کر کے دکھلا رہا ہو، اس دکھانے میں کہ کون کون سا انداز ہے، کیسے کیسے جوا کھیلا جاتا ہے، کیسے نقصان ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے دو فرشتے مقرر فرمائے۔ لیکن یہ دو فرشتے بھی جہاں کلام فرماتے، جس سوال کا جواب ارشاد فرماتے، وہ پہلے متنبہ فرماتے، تنبیہ کرتے کہ ہمارا وجود امتحان ہے، جو کچھ تم کرو گے، ایسے سیکھو گے یہ جادو، تو یہ تمہیں اتنا نقصان دے گا کہ تم کفر میں جا پڑو گے اور آخرت کا کوئی تمہارا حصہ نہیں رہے۔ حدیث شریف میں بڑا واضح آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا حصہ آپ نے فرمایا شرک، اس سے بچو، اور اس حدیث شریف میں یہاں دوسرے درجے میں جادو کو بیان فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو، چونکہ بنیاد جو ہے وحدانیت ہے۔ اب بنیاد کے ساتھ جو ہی عمل کا پہلو آیا تو آپ نے فرمایا اس سے جادو سے بچو، تو سات چیزوں سے بچنے کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ شرک کے بعد دوسری شے آپ نے جادو ارشاد فرمائی۔ پھر جادو کے حوالے سے جب بحث آتی ہے معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی یہود نے جادو کیا، और वही पहलू जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम सवालात उठाते रहते हैं और अपने आप को उसी में उलझाते रहते हैं, तो ये उलझाओ इस हवाले से भी जो है वो लोग गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। तो उसकी हकीकत इतनी सारी है जो हदीस शरीफ में मिलती है कि कुछ कुछ माह का वक्त है, जब वो जादू किया गया, आपने अल्लाह से दुआ की, तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि कोई काम ऐसा जो अभी करना हो आप ख्याल फरमाते कि शायद किया है, काम रहता है, तो अल्लाह करीम के हुजूर आपकी दुआ और अल्लाह करीम ने फरिश्ते मबूस फरमाए। और ये पहलू जादू के अंदाज तक की बात जाती है कि कंगी बाल नर्म जो खजूर है उसका तन्ना और गहराई में कुएं में जिसका पानी साफ नहीं है, रंग भी बदल चुका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और यही जो है सूरत हाल नजर है। फिर आखिरी दो सूरे मुबारक जो ये जो आयात आखिरी दो सूरे मुबारक की हैं ये ऐसी हैं कि जो इस तरह के तमाम जो पहलू हैं उनसे हिफाजत का सबब बनती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयात नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आपकी निस्बत नसीब हुई, कलाम ज़ाती के पहलू से नसीब हुई, जहाँ अजर और सवाब भी है, कुर्ब भी है, इलाज और ज़रूरत की तकमील है। इन सारे हिस्सों को आप गौर फरमाएं तो कुरान करीम एक और पहलू बयान फरमाता है। इसी तरह मैंने अंबिया और रसूल साहबगा के हवाले से बयान फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके बयान फरमाया गया है कि इसी तरह मैंने अंबिया रसूल पहले भी मबूस फरमाए। लोग मुखालफतें करते थे, तकलीफ पहुँचाते थे, वो सब्र फरमाते थे, आप भी मेरे हबीब सब्र फरमाए। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी में अमूमी ज़िंदगी वो बसर करते थे, जब मुखालिफ एतराज़ करते, कुफार एतराज़ करते कि आपके साथ फरिश्ते होते, आपके पास बागात होते, आपके पास कुव्वत और ताकत होती, फिर हम मानते, बहुत सारे एतराज़ात और पहलू करते रहते थे। तो यही जो इंसानी ज़िंदगी है इसका दुनिया में बिलअमूम बसर करना, ये हस्तियाँ अमूमी नहीं, इंतहाई खसूसी। हम तो इंसानों में तकसीम कर रहे होते हैं ना, आम आदमी है, ये खवास हैं, ये अक्सरुल खवास हैं, ये सारी बहसें कहीं की कहीं रह जाती हैं। इन हस्तियों की जो बुलंदी है, जो ज़ात है, वो कुर्ब इलाही के वो मनाज़िल हैं जो बयान नहीं किए जा सकते ना समझे जा सकते। इस बुलंदी का, इस कुर्ब का ना हमारी ज़बान, ना हमारे अल्फाज बयान कर सकते हैं, ना हमारी समात हमारी जहनों को उस दर्जे तक समात दे सकती है कि वो कुल्ली तौर पर समझ सकें। लेकिन बिलअमूम जिंदगी बसर क्यों की जाती है? इसलिए कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि अगर दुनिया में फरिश्ते बसते होते तो उनमें मैं फरिश्ते भेजता, क्यों? ताकि अमूमी जिंदगी जो है वही इम्तिहान है, उसमें कैसे जिंदगी बसर करनी है, इसलिए अल्लाह के ये मुकर्रब हस्तियाँ अमूमी ज़िंदगी बसर फरमाती रहीं। और कुरान करीम उसवे हसना को जब बेहतरीन नमूना इरशाद फरमाता है तो ये शाओ गदा दोनों के लिए बेहतरीन नमूना है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पहलू हर परतव जो है आसन दर्जे का मौजूद है। तो यही पहलू इस हकीकत से भी पर्दा चाक करता है कि जादू की हैसियत कोई नहीं, एक शीतनत है जिसकी कोशिश की। अब शीतनत के पहलुओं में कुरान करीम ही से जवाब लें कि शैतान ने कहा कि मैं ए अल्लाह तेरे बंदों को वरगलाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया आगे से आ, पीछे से आ, अपनी जमात भेज, जो तेरी कुव्वत है तू सर्फ कर, लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे उन पर तेरा बस नहीं चलेगा। और इसका इकरार शैतान भी करके गया। अल्लाह की जात पर मोतरिज हुआ अल्लाह माफ फरमाए। यहां तक वो बदबخت बोला कि अल्लाह तूने मुझे यहां पहुंचाया कि मैं इनकार कर रहा हूं। ये जो मैं दरगांदा दरगाह हुआ हूं ये तेरे सबब हूं, कुरान करीम की आयत है, उसने ये एतराज किया। लेकिन जो अल्लाह का रिश्ता है उसमें अपने लिए भी रब फरमाया, अता फरमाने वाला नहीं, उसने इनकार किया फुर्सत अपने मांगने में। फिर उसका जो रिश्ता बंदगी का है उसका भी इनकार नहीं कर सका, क्योंकि हकीकत है बदबخت तो खुद हुआ। तो जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं उनका कुछ नहीं हो सकेगा। इसी तरह जब जादू की बात आएगी मौजा सामिन कराम, तो जादू की हैसियत जाती कोई नहीं। अक्सर मिसाल देता हूं, और मिसाल मकसद समझाना होता है, मकसद ये नहीं होता कि मिसालें शुमार करनी। रोशनी न हो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि रोशनी न हो तो क्या होगा? अंधेरा हो। रोशनी हो तो क्या होगा? अंधेरा खत्म हो। इसी तरह नूरे ईमान का होना इस तरह की सारी जुल्मत जो है उसे मिटाने का सबब। उसमें जिस दर्जे की कमी है फिर ये जो बुराई है इसकी हैसियत समझ आती है कि फिर हाँ फिर ये बढ़ती है, इसका वजूद कोई नहीं। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, और वो भी जब तक कह न देते कि हमारा वजूद भी एक इम्तिहान है, सो कुफर में न जा पड़ना, सो वो किसी को नहीं सिखाते थे। और फरमाया फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही मिनल मर्रि वज़ौजिह। तो ये उनसे ऐसा सहर सीखना चाहते थे जिससे मियां और उसकी बीवी में जुदाई डाल दें। बेशुमार पहलू सीखना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कसरत जो बात इख्तियार की गई उसके बयान भी फरमा दिया गया कि ये ऐसा सहर सीखना चाहते थे जिससे मियां और उसकी बीवी में जुदाई डाल दें। तो समझ आती है कि बुराई का पहलू भी जो है, बेहयाई का पहलू जो है, ये भी किस दर्जे का चलता आ रहा है। चूंकि जब नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है तो बुराई और बेहयाई, चूंकि फराइज में सबसे बड़ा फरीजा अदा जो करना है वो नमाज का फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज। बेनमाजी से मुतल्लिक आप देखें क्या फरमाया गया हदीस शरीफ में, बेनमाजी से मुतल्लिक फिका में जो बहस मिलती है उसे पढ़ें, बेनमाजी से मुतल्लिक उसके जनाजे और उसके कब्रिस्तान से मुतल्लिक पढ़ें। उसकी जिंदगी में अगर इस्लामी निज़ाम राज हो तो बेनमाजी की जिंदगी देखें कि वह पाबंदे सलासल है या उसे कोई इनाम दिए जा रहे हैं। इतने बड़ा हुक्म, फिर वो इनाम जो अल्लाह जल्ला शानुहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया मेराज की रात। अल्लाह की जात हर जगह हर लहजे मौजूद है, हमारा ईमान है, हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। फिर खुसूसी ये सफर और खुसूसी हाजिरी, हदीस शरीफ में मिलता है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह 50 नमाजें आपकी उम्मत के लिए मुश्किल हो जाए। तो जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे थे वहां क्या अल्लाह करीम नहीं जानते थे? क्या अल्लाह करीम नहीं देख रहे थे? क्या अल्लाह करीम नहीं सुन रहे थे? क्या वहीं अर्ज नहीं की जा सकती? तो ये जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने बार बार हाजिरी का शर्फ अता फरमाया ये उसका एहसान है। वहीं भी तो ये बात अर्ज हो सकती थी ना। फिर उसकी जात अलीम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये समझ रहे थे तो रब्बे कायनात नहीं जानते थे कि ये 50 जो हैं इतना इनाम जो है ये सकत इस नहीशी में इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। है तो इनाम, बात नहीफी की है ना, सेहत न हो तो अच्छी खुराक जो है उसे हजम नहीं करता कर सकता मैदा, उल्टा बीमारी बन जाती है, कमजोरी और नहीफी में इजाफा हो जाता। तो है तो ये इनाम करम और एहसान। उसने जो वो शर्फ बख्शा हजूरी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इनाम में नमाज अता फरमाई, अत्तहियत के जो आप अतखियात हम पढ़ते हैं इसके इब्तदाई कलमात में हदीस शरीफ में इनसे मुतल्लिक देखिएगा जी कहाँ का इनाम है, कैसे इरशाद फरमाएंगे, कैसे आपने बयान फरमाया। और इतना बड़ा इनाम, फिर इन पांच का अजर और सवाब उसी हुक्म के तहत 50 का, फिर कुरान करीम बयान फरमा रहा है बुराई और बेजाई से रोक। तो हम जिन्हें हुक्म दिया जा रहा है हम नहीं समझ रहे, लेकिन जो बुराई वाले हैं वो जान रहे हैं कि ये बुराई इख्तियार कराई जाओ हर शय की जड़ यही होगी। आप गौर नहीं करते कि हमारे मुआशरे में भी हयाई को किस कदर आम किया जा रहा है। आप भले किसी शय को तशहीर में देखें तो उस शय की तशहीर समझ नहीं आती, लेकिन बेहयाई जरूर समझ आती है। तो ये जो बेहयाई का अंसर हमारे अंदर उंडेला जा रहा है, ये दानिश्ता है, नादानिश्ता नहीं है। और हम सारे इसी में बहते चले जा रहे हैं। गौर करें मुआशरे की कदरें कहां जा पहुंची हैं, क्यों? इसलिए कि ये बेहयाई का अंसर है। और इसी को आप देख लें, ये जो मियां और बीवी के दरमियान दूरी है आज अपने मुआशरे में देख लेना ये कैसी है या नहीं। तो तब भी बेहयाई पर पूरा जोर शैतान ने लगाया हुआ था और आज भी लगाया हुआ है। और मिन हैसुल कौम, पूरा नज्म जो है वो हम इसको फैलाने का सबब हो रहे हैं, चे जाए कि हमें ये इधराक हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो वो इबादत जो रब्बे कायनात ने मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई और ऐसा करम और एहसान फरमाया कि आपकी उम्मत को भी शामिल फरमाया, ये फर्ज उम्मत तक है। मुस्तफीद हर उम्मती इस इनाम से हुआ। तो कुरान करीम फरमाते हैं बुराई और बेहयाई से रोक दो। तो बुराई और बेहयाई इतनी इतनी बुरी शय है कि नज्म जो मुआशरे का है उसे उखाड़ने का सबब बनती है। न सिर्फ मुआशरे के नज्म को, इनफरादी तौर पर इतना तफ़ुन इंसान के अंदर पैदा कर देती है कि हालात बिगड़ जाते। फिर ख्वाहिशात जो हैं वही पनपती हैं और उन्हीं ख्वाहिशात में इंसान डूबता चला जाता है। तो फरमाया क्या सीखते थे, सीखना चाहते थे मियाँ और उसकी बीवी में जुदाई डाल दें। और इसकी तफसीर में देखें तो ये फिर आगे मजीद जो बुराई और बेहयाई है उस हवाले से ये बात वो चाहते थे। वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर ये जादूगर इससे अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इल्ला बिइज़्निल्लाह, बहुत खूबसूरत नुक्ता जो है हजरत जी ने बयान फरमाया। बिलअमूम जो तर्जमा है वो ये है कि अल्लाह के हुक्म के अलावा, और बिलअमूम इससे जो समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि किसी पर जादू का असर होना है तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि ठीक है इस पर जादू का असर हो जाए तो उस पर जादू का असर होता है। बड़ा खूबसूरत अंदाज हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस नज़ाकत से जो पर्दा उठाया वो फरमाते हैं हिफाजत इलाहिया उठाई जाती है। तो देखे ना, किसी शय से किसी का नुकसान होना और किसी के नुकसान का कहना कि ये नुकसान हो, है दोनों सूरतों में वही नुकसान। कितनी नाजुक शय है ये रिश्ता जो बंदगी का है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, आप गौर कीजिए जो मोहब्बत में तजावज़ करते हैं और जो बिलअमूम हुक्म के समझने में सख्ती करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि सामने ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जहाँ नादानश्ता गुस्ताखी भी हर शय ले डूबेगी। लेकिन मैं आप पर फातेह होना चाहते हूँ, आप मुझे मफ्तूह करना चाहते हैं। तो यहाँ भी जब बात बारगाह एजदी की आती है तो फिर फरमाया, मगर ये जादूगर इससे अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हजरत जी यहाँ जब बयान फरमाते हैं, कुरान करीम का हवाला भी इरशाद फरमाते हैं, जहाँ फरिश्तों की ज़िम्मेदारी उमूर के हवाले से बयान फरमाई गई है कि मुफस्सरीन कराम उस आया करीमा के तहत ये तफसीर भी करते हैं कि इंसानी वजूद पर भी एक एक हरकत एक एक जुज़ पर फरिश्ते अल्लाह के मुकर्रर हैं, और जहाँ बीमारी पैदा हो वहाँ फरिश्ते का काम रोक दिया जाता है, आज खुद बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह कोई आमाल ऐसे होते हैं, जैसे खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई खाना पीना ऐसा अमेज ज़्यादा होता है कि उससे मैदा ख़राब होता है। खाना भूख मिटाता है, वजूद को ताकत देता है, कमज़ोरी दूर करता है, ऐसा ही है ना। लेकिन बाज़ दफ़ा खुराक बीमारी का सबब हो जाती है, तो वो जो खुराक के अंदर कमी बेशी थी वो बीमारी का सबब हो गया। इसी तरह फरमाते हैं कि बाज़ आमाल ऐसे होते हैं, दानिश्ता या ना दानिश्ता, उसकी अदायगी जो है वो हिफाजत इलाहिया से बंदे को निकाल देती है, हिफाजत इलाहिया उठ जाती है। फिर जहाँ रोशनी ना हो वहाँ क्या होता है, सवाल किया न था। इसी तरह जब हिफाजत इलाहिया नहीं होगी तो फिर सूरत क्या होगी, फिर असरात हो सकते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर होगा, उसकी हैसियत ही ना रहे। इल्ला बिइज़्निल्लाह, ऐसा नहीं है कि कोई किसी का जोर है। फिर एक इसका दूसरा पहलू भी बयान फरमाया आपने, मुजाहदात के हवाले से, क्योंकि बंदे मोमिन को एक कांटा जो चुभता है उस पर हदीस शरीफ में कितनी जो है गुनाह उनकी माफ़ी और कितने सवाब अता फरमाने का बयान फरमाया गया। तो जहाँ सजा की भी बात आती है वहाँ इम्तिहान वो जो कुर्ब की तरफ और बढ़ा देता है वो भी बात आती है। तो सूरत मुजाहदे की भी आ सकती है, इख्तियारी कमज़ोरी इज्तरारी मुजाहदे को पहुँचा रही है, बात तो ये भी हो सकती है। जंग में गर्दनें तो दोनों तरफ से उड़ रही हैं, हक़ो बातिल पर जब बात आएगी तो कहीं दर्जे शहादत नसीब हो रहा है, कहीं कोई जहन्नम वासल हो रहा है, गर्दनों तो दोनों सूरत में उड़ रही हैं ना। कौन सा पहलू है, नीयत क्या है, खड़ा कहाँ है। तो इसी तरह जब बात तकलीफ की आती है तो बजाय इन तकालीफ को हैसियत देने के मरकूज ताल्लक माल्ला पर करना है, तो फिर यही तकालीफ जो हैं दूसरी सूरत इख्तियार कर जाती हैं, मुजाहदे की सूरत में। अगले दिन भी कहीं ऐसे ज़ाती नशिस्त में मैं साथियों से कोई बात कर रहा था असबाब के हवाले से, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम पर अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया है, कमज़ोर गुनाहगार, न मेहनत न मुजाहद न इब्तदान, वो खलूस जो दरकार है इसरा के लिए, फिर न मेहनत न मुजाहदा न इस्तेहकाम, मैं कहता है ना किसी शय पर खड़े हो जाना फिर डट जाना, हमारा वो खड़ा होना भी मुतज़लज़ल सा है, हिलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, उसके बावजूद इन मुराकबात का हसूल, क्योंकि बुनियाद तो लताइफ से शुरू हो रही है ना, कलब से शुरू हो रही है, कलब का ही अता फरमाना सारे का सारा उसी का करम है, बीच में मखलूक का है कुछ नहीं, सारी अता चे जाए कि आगे बात मुराकबात की या मनाजिल की जाए, सारी उसकी अता है, उसका करम है, उसका एहसान है, शान रबूबियत है, हर तरह की जरूरत पूरी फरमा रहा है उसका करम। इस सारी कमजोरियों खताओं के बावजूद एक नजर देखो तो सही कितना उसने एहसान फरमाया। फिर हमारी इबादत हैं क्या? और मामूली मामूली तकलीफ से, कमी बेशी से, अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाते हैं और अता फरमा देते हैं। जो है वो राशिक होता है, मजीद अता फरमा देते हैं। फिर जब इबादत नहीं होती मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, तो फिर ये जो कुर्ब इलाही का रास्ता है ना, ये है बहुत बुलंद, लेकिन इसमें फिर मुजाहदे आना शुरू हो जाते। अब शहीद होने के लिए क्या करना पड़ता है? उंगली कटानी पड़ती है कि गर्दन? तो फिर बात बनती है उसे अल्लाह से रिज्क अता हो रहा है, तुम नहीं जानते वो जिंदा है क्या? उंगली का मिसाल भी है ना, क्या कहते हैं उंगली कटा के शहीद हो रहा है, तो बहानों की तो बात नहीं है, गर्दन कटानी पड़ती। तो फिर अल्लाह एहसान फरमाते हैं, फिर बाज मनाजिल ऐसी होती हैं उनके लिए उस दर्जे की इबादत जरूरी होती है, वो फिर मेहरबानी फरमाता है। कोई कांटा चुभ जाता है तो गलतियों और खुदा माफ फरमाते हैं। तो वो सत नजरी तो यहाँ नहीं है ना, हमारी तो नज़रें भी, ये आजकल की खुराक और जो जिंदगी के मौजूदात हैं ऐसे हैं कि हमारी तो नज़रें भी नहीं काम कर रही होती, लफज देख और रहे होते हैं, नज़र और वर आता है। तो वो सत नजरी कहाँ? तो बात बसारत बसारत की करते रहते हैं ना, बात तो बसीरत की है। तो बसीरत की भी बात करो तो दुनिया में वो सत नजरी कहाँ? ये हाल बदलता है जब मलकुल मौत वारिद होता है, वुसअत नजरी में बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अहले बरज़ख जब कोई गुफ्तगू फरमाते हैं तो वो बहुत वसी होती है, वो महदूद नहीं होती वुसअत के अमलों। लेकिन बात बरज़ख से भी निकल कर जब बात रोज़े माशर और उससे अगले हिस्सों को अब्दुलाबाद पहुंचेगी, फिर कुल्ली तौर पर समझ आएगी जो हमारा हिस्सा है उसकी, कितना बड़ा इनाम है और कितनी, जैसे कहते हैं ना, बहानों से अता फरमाना, तुहिब्बुल अफ़्फ़ा, उसे महबूब है माफ फरमाना, हमारी कमजोरियां खताएं वो बहानों से माफ फरमाता रहता। अपनी मखलूक है, अपनी इबादत को पैदा फरमाई है, खालिक है, मालिक है, राज़िक। अब बात बिगड़ती जब है, इस सारी एहतियात के बावजूद ये जब मुकाबल जा खड़ा होता है तो बिगड़ती तो तब है। क्या है जिन जिन क्या है? आग की लौ है, तो आग की लौ क्या है? उसी की पैदा की हुई है, लौ भी उसी की पैदा की है जिसने आग पैदा की, और लौ से कहाँ जिन पैदा हो सकता है? कुदरत कामला का एक मज़ाहिर हैं, नमूने हैं। फिर कैसे जो पैदा किया सारे जिंदगी सजदे करता रहता अपने उस हजूरी तक पहुँचने को, कैसे फरिश्तों की जमात में जा बैठता? देने आज अता फरमा। लेकिन अंदर जो शय है ना, जब वो ज़ाहिर हो तो फिर उसके मुताबिक ही फिर बंदा भुगतता है। उसने इनाम में जन्नत पैदा फरमाई, लेकिन हदीस शरीफ में कसरत मौत का याद बयान, वो जो है उसे याद रखना बयान फरमाया गया, जो लज्जतों को मिटा देगी। फिर आगे दोज़ख भी तो उसी की पैदा की, उस पर मुतय्यन फरिश्तों का दद, उसके दरवाजे बयान फरमाए, जमातों का तकसीम होना बयान फरमाए, खुराक बयान फरमाई, तकलीफ बयान फरमाई। तो फिर अपनी हैसियत देखनी है ना कि हम मखलूक हैं। तो बात इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म की है और अल्लाह के हुक्म के तहत आ जाया जाए। मखलूक है, मोहताज है, ये मोहताजी देखिए, बात यह है कि हर पहलू में बंदा गलत या सही हो सकता है, निकल सकती है गलती, निकल सकती है, लेकिन ये मोहताजी हमारी मेराज है, हमारा इनाम है। उसने मुझे अपना बंदा पैदा फरमाया, मैं अपने अल्लाह का मोहताज हूँ। मैंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से रहनुमाई हासिल करनी है, मैं उसी की दी हुई हयात बसर कर रहा हूँ, उसी के जहान में बसर कर रहा हूँ, उसी की तरफ मौत की मंजिल से गुजरूंगा, उसी के हजूर जा पेश होऊंगा, हर बात उसकी तरफ जा रही है। तो ये तो हमारी मेराज है, ये तो बुलंदी है, तो ये इन्हितात नहीं है। यहां सरनगू होना मेराज है। अब बात तो वो ही है ना जो कर रहे थे कि नूरी ईमान की जरूरत है, नूर होगा तो उजाला होगा भाई, नूर नहीं होगा तो अंधेरा होगा, जहालत होगी, जगह जगह टकरें लगेंगी, गिरेंगे पड़ेंगे। वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिज़्निल्लाह। अल्लाह करीम ईमान मजबूत और रासिख अता फरमाए। मेरी ख्वाहिश और कोशिश थी कि इस आया करीमा की तकमील हो जाए। चंद गुजारशात पर अगले बयान में अर्ज कर लेंगे। अल्लाह करीम मेरी कमी बेशी माफ़ फरमाए, हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। वाहिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।